मैं दर्शन आपके लिए अध्याय 5 दिल्ली सल्तनत का विघटन प्रस्तुत कर रहा हूँ। दिल्ली सल्तनत का विघटन। दिल्ली सल्तनत का अस्तित्व 1206 से 1526 ईस्वी तक बना रहा, परंतु 3 शताब्दी लंबे इस काल में सल्तनत की स्थिति एक समान नहीं रही। इसमें उतार चढ़ाव आते रहे। 1394 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण तक सल्तनत एक विशाल भारतव्यापी साम्राज्य बनी रही, परंतु इस आक्रमण के बाद सल्तनत का क्षेत्र सिमटकर एक छोटे से राज्य में बदल गया। लोदी शासकों ने इसका पुनः विस्तार किया, किंतु इसका प्रभाव अल्पकालीन रहा। बाबर के आक्रमणों ने इसे पूर्णतः नष्ट कर दिया। अल्टा सल्तनत के पतन को 2 स्पष्ट चरणों में देखा जा सकता है। प्रथम, साम्राज्य का विघटन। द्वितीय, सल्तनत का अंत। साम्राज्य का विघटन 1398 ईस्वी और सल्तनत का अंत 1526 ईस्वी। तैमूर का आक्रमण। मध्य एशिया के महान साम्राज्य निर्माताओं और विजेताओं में तैमूर का नाम अग्रगण्य है। इसका जन्म 1334 ईस्वी में हुआ। मध्य एशिया में उस समय राजनीतिक अस्थिरता फैली हुई थी, क्योंकि तरमसीरी की मृत्यु के बाद मंगोलों की शक्ति अव्यवस्थित हो चुकी थी। तैमूर, जो कि तुर्कों के बड़लास कबीले का सदस्य था, किंवदंतियों के अनुसार उसके और चंगेज खां के पूर्वज एक ही थे, इस परिस्थिति का लाभ उठाकर एक विशाल साम्राज्य के निर्माण में सफल रहा। इस साम्राज्य में मध्य एशिया और पश्चिम एशिया का विशाल क्षेत्र सम्मिलित था। उसने अपने सैनिक अभियानों के क्रम में 1398-99 ईस्वी के बीच उत्तर भारत के क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया, जिससे पतनशील तुगलक साम्राज्य का पूरी तरह विघटन हो गया। अपने सैनिक अभियानों में तैमूर ने लूटमार और नृशंस हत्या का प्रदर्शन नियमित रूप से किया था। उत्तर भारत के सैनिक अभियान का भी मुख्य लक्ष्य धन लूटना ही था, क्योंकि उत्तरी भारत की संपन्नता से मध्य एशिया के शासक महमूद गजनवी के समय से ही परिचित हो चुके थे। तैमूर के एक पौत्र पीर मुहम्मद ने महमूद का अनुकरण करते हुए उत्तरी भारत की विजय की योजना बनाई। 1369 से 1397 ईस्वी में उसने उच्च और दीपालपुर के क्षेत्र को जीत लिया, मगर वह मुल्तान के नगर को जीतने में असफल रहा। अतः उसकी सहायता के लिए 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत में प्रवेश किया। उसने अपनी योजना सावधानी के साथ निर्धारित की। रास्ते में प्रमुख नगरों को छोड़ते हुए उसने सीधे दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। तुगलक शासक महमूद के आक्रमण का सामना करने में असमर्थ रहा। उसने पहले मालवा और फिर गुजरात में शरण ली। तैमूर की सेना इस काल में दिल्ली में लूटमार और नरसंहार में व्यस्त रही। तुगलक साम्राज्य उस समय तक वस्तुतः समाप्त हो चुका था और दिल्ली की जनता आक्रमणकारियों की दया पर छोड़ दी गई। भीषण रक्तपात और लूटमार के बाद तैमूर ने मेरठ की ओर प्रस्थान किया। उस नगर को भी लूटा। 1399 ईस्वी में शरद ऋतु की समाप्ति से पहले ही तैमूर ने वापस मध्य एशिया लौटने का निश्चय किया। इस प्रकार यह प्रलयकारी आक्रमण समाप्त हुआ। तैमूर के आक्रमण को उत्तरी भारत के इतिहास में एक विभाजन रेखा के रूप में देखा जाता है। तैमूर ने न केवल तुगलक साम्राज्य का अंत कर दिया, बल्कि उत्तरी भारत में केंद्रीय सत्ता के युग को ही समाप्त कर दिया। तुर्क शासकों ने लगभग 2 शताब्दी के काल में अपने प्रयास से जिस संगठित केंद्रीय राजनीतिक जीवन का विकास किया था, वह आक्रमण से विनष्ट हो गया। उत्तरी भारत फिर एक बार अनेक छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों में विभक्त हो गया। दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र अब दिल्ली नगर के आसपास ही सिमट कर रह गया। पंजाब को तैमूर ने अपने साम्राज्य में मिला लिया और खिज्र खां को वहां का शासक बहाल कर दिया। पूर्व में जौनपुर का राज्य स्वतंत्र हो गया और पश्चिम में गुजरात और उसके दक्षिण में खानदेश का राज्य स्वतंत्र हो गया। दक्षिण भारत में बहमनी राज्य और विजयनगर पहले ही स्वतंत्र थे। केंद्रीय सत्ता के विघटन से अनेक हिंदू राजा भी सल्तनत की संप्रभुता से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से राज करने लगे थे। इन सब के अतिरिक्त राजपूत शासक फिर एक बार उत्तरी भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए सक्रिय हो उठे थे। तैमूर के आक्रमण के पश्चात उत्पन्न यह अनेक राज्य और उसके आपसी संघर्ष का इतिहास लगभग 125 साल तक उत्तरी भारत की राजनीति को प्रभावित करता रहा और बाबर के आक्रमण तक यह स्थिति बनी रही। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली की आर्थिक संपन्नता और संस्कृति गौरव का नाश कर दिया। दिल्ली से वह बड़े पैमाने पर धन लूट कर ले गया। इसके अतिरिक्त उसने बड़ी संख्या में अपने साथ कारीगरों, शिल्पियों, दस्तकारों को भी दास बनाकर मध्य एशिया ले जाने का फैसला किया। पंजाब का उर्वर क्षेत्र, उसकी लगान रूपी आमदनी भी तैमूर के हाथ लगी। इन सबसे दिल्ली की स्थिति दयनीय हो गई। इतना ही नहीं, तैमूर के हाथों मारे गए लोगों के शव सड़ने के कारण राजधानी में महामारी फैल गई। विद्वान, कलाकार, बचे हुए कारीगर और शिल्पी अब जौनपुर के नगर की ओर जाने लगे, जहां उन्हें सुरक्षा का आश्वासन और शासकों की प्रसन्नता की आशा थी। इन प्रवासियों ने जल्दी ही जौनपुर के नगर को सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना दिया। इसी काल में जौनपुर का नगर सिराजे हिंद कहलाने लगा, क्योंकि यह सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया चुका था। दूसरी ओर तैमूर के आक्रमण के पश्चात स्थापित होने वाले नए क्षेत्रीय राजाओं में भी शासक वर्ग द्वारा कला, विद्या और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रश्रय देने की नीति अपनाई गई। इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि इन विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय सांस्कृतिक परंपराएं इस्लामी संस्कृति की परंपराओं के संपर्क में आई और दोनों के परस्पर प्रभाव ने उत्तरी भारत के सांस्कृतिक जीवन को और समृद्ध एवं समृद्ध बनाया। स्वयं तैमूर ने जिन भारतीय कारीगरों को अपनी राजधानी समरकंद में ले जाकर बसने का फैसला किया, उन कारीगरों और मजदूरों ने समरकंद के नगर को सुसज्जित करने, अनेक भव्य और विशाल इमारतों के निर्माण करने और अन्य सांस्कृतिक कार्यों में योगदान देकर उत्तरी भारत में विकसित हिंद इस्लामी संस्कृति की परंपराओं को मध्य एशिया में प्रसारित किया। अतः इस आक्रमण के राजनीतिक जीवन को प्रत्यक्ष और सांस्कृतिक जीवन को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। राजनीतिक क्षेत्र के परिणाम विनाशकारी रहे, परंतु सांस्कृतिक जीवन को और अधिक समृद्ध बनाने में इस आक्रमण का योगदान रहा। 1399 ईस्वी में तैमूर की वापसी के बाद दिल्ली में कुछ समय तक राजनीतिक अनिश्चितता का वातावरण बना रहा। 1405 ईस्वी में सुल्तान महमूद तुगलक वापस दिल्ली लौट आया और शासक के रूप में उसकी पुनर्स्थापना हुई। 1412 ईस्वी तक उसने शासन किया। इस बीच उसे अपने पूर्वी सीमा पर जौनपुर के सरकी शासकों और पश्चिम में पंजाब के खिजर खां के साथ संघर्ष करना पड़ा। 1405 ईस्वी में ही तैमूर की मृत्यु हो गई। उसके बाद खिजर खां ने पंजाब में स्वतंत्र सत्ता ग्रहण कर ली थी। धीरे धीरे उसने अपनी शक्ति का विस्तार आरंभ किया। इसी क्रम में उसने दिल्ली पर भी आक्रमण किया। इसी बीच 1412 ईस्वी में महमूद तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का कोई निश्चित शासक नहीं रहा। दौलत खान नाम के एक सरदार ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, परंतु 1414 ईस्वी में उसे खिजर खां ने पराजित कर दिल्ली में एक नए वंश की स्थापना की, जो सैयद वंश कहलाता है। सैयद वंश 1414 से 1551। सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां था, मलिक सुलेमान का पुत्र, जो फिरोज शाह के अमीर मलिक मर्दान दौलत का दत्तक पुत्र था। मलिक सुलेमान के पूर्वजों के बारे में निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है। तुगलक शासकों के अधीन खिजर खां एक सेनानायक के रूप में कार्यरत रहा था। तैमूर के आक्रमण के समय उसने उसकी सत्ता स्वीकार कर ली थी और तैमूर द्वारा उसे पंजाब का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। 1414 ईस्वी में दिल्ली की विजय के पश्चात उसका अधिकार पंजाब और दिल्ली पर फैल गया। यही सीमा उसके वंशजों के समय में भी रही। सैयद वंश की सत्ता 37 साल तक बनी रही, लेकिन इस काल में ना तो खलजी काल की तरह साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई, ना ही तुगलक काल की तरह व्यापक प्रशासनिक सुधार हुए। सल्तनत की सीमा भी दिल्ली से लगभग 200 मील के क्षेत्र तक ही सीमित रही। सैयद शासकों ने जो सैनिक अभियान किए, वह या तो इस सीमित क्षेत्र में विद्रोह और उपद्रव के दमन के लिए किए गए या समीपवर्ती राज्यों के शासकों से युद्ध के लिए किए गए, परंतु इनका व्यापक परिणाम नहीं निकला और राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में सैयद शासकों की ऐसी कोई उपलब्धि नहीं रही जो भारतीय इतिहास में उन्हें गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त हो पाए। 1451 ईस्वी में इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन शाह को उसके अफगानी मंत्री बहलोल लोदी द्वारा सत्ता से हटाकर इस वंश का अंत कर दिया गया। सैयद वंशीय शासक निम्नलिखित थे: खिजर खां 1414 से 1421, मुबारक शाह 1421 से 1433, मोहम्मद शाह 1434 से 1443 और अलाउद्दीन शाह 1443 से 1451। लोदी वंश 1451 से 1526। अफगानों की और विशेषकर लोदी वंश के आरंभिक इतिहास के संबंध में प्रामाणिक जानकारी का अभाव है। इनके मूल संबंध में इतिहासकार समय समय पर विवाद उठाते रहे हैं। फिर भी इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि नसरुद्दीन मुहम्मद के शासनकाल में 1246-65 अफगानों को दिल्ली सल्तनत की सेना में नियुक्तियों मिलने लगी थी। बलबन ने भी इसका उपयोग मंगोल आक्रमणकारियों के विरुद्ध किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इनकी स्थिति और सुदृढ़ हुई, क्योंकि यह सामंतों के रूप में पराधीन हुए। फिरोज शाह के समय तक इन्हें प्रांतीय गवर्नरों के रूप में नियुक्त किया गया। उसके उत्तराधिकारियों के समय में इनकी स्थिति काफी मजबूत हो चुकी थी और जब 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने सत्ता पर स्थापना की और उस गद्दी पर कब्जा किया, तो उसका विशेष विरोध नहीं हुआ। अफगान केवल दिल्ली में ही अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल नहीं रहे थे, बल्कि तैमूर के आक्रमण के पश्चात उदित होने वाले अनेक क्षेत्रीय राज्यों में भी अधिकांशतः अफगान शासकों की ही सत्ता बनी हुई थी। पश्चिम भारत में, मध्य भारत में और पूर्वी भारत में अफगानों की स्थिति अत्यंत शक्तिशाली थी। 1526 ईस्वी में बाबर के आक्रमण तक अफगानों का ही प्रभुत्व उत्तर भारत की राजनीति में बना रहा। बहलोल लोदी 1451 से 1489। बहलोल लोदी गंभीर परिस्थितियों में दिल्ली सल्तनत का शासक बना था। जौनपुर के शासकों के साथ संघर्ष जारी था और उसके अधीनस्थ शासक स्वतंत्र सत्ता ग्रहण करने के लिए प्रयास कर रहे थे। राजपूत शासक भी मेवाड़ राज्य के नेतृत्व में संगठित होकर उत्तर भारत में अपनी सत्ता की पुनर्स्थापना के लिए सक्रिय हो उठे थे। बहलोल ने अपने प्रमुख शत्रु जौनपुर के सरकी शासकों को पराजित किया। 20 वर्ष 1459 से 1479 के लंबे संघर्ष के बाद उसने जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित करके उसे बिहार के क्षेत्र की ओर पलायन पर बाध्य कर दिया। अपने बड़े बेटे बाड़बक शाह को उसने जौनपुर का शासक नियुक्त कर दिया। 1468-69 में बहलोल ने मुल्तान पर चढ़ाई करके उस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में कर लिया। कहा जाता है कि इसी समय उसने बड़ी संख्या में रोह के अफगानों को सल्तनत की सेना में भर्ती करने की नीति अपनाई। इसके फलस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में अफगान आकर भारत में बसने लगे। बहलोल ने मध्य भारत में भी सैनिक अभियान किए। उसने 1486-87 में ग्वालियर के शासक राय कर्ण कीर्तिदेव को पराजित करके नजराना देने पर बाध्य किया और धौलपुर के राजा से भी नजराना वसूला। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उसने मेवाड़ पर भी चढ़ाई की, लेकिन इस अभियान के संबंध में विशेष जानकारी नहीं मिलती। मालवा पर भी बहलोल ने चढ़ाई की मगर असफल रहा। बहलोल के शासनकाल का वास्तविक महत्व यह है, इस काल में दिल्ली सल्तनत की पुनर्स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ। तैमूर के आक्रमण के पश्चात सल्तनत की शक्ति प्रतिष्ठा और उसके क्षेत्रों का ह्रास हुआ। सैयद शासक इस स्थिति को सुधारने में असमर्थ रहे, मगर बहलोल लोदी ने अपने प्रयासों से सल्तनत के क्षेत्र को विस्तृत किया और उत्तर भारत की राजनीति में इसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कराया। इस दिशा में और आगे प्रगति बहलोल के पुत्र और उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी द्वारा संभव हुई। सिकंदर लोदी 1489 से 1517। सिकंदर लोदी अपने पिता बहलोल लोदी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के युद्ध में विजय होकर दिल्ली का शासक बना। उसके मुख्य प्रतिद्वंदी उसके बड़े भाई बाड़बक शाह और संबंधी आजम हुआ उठे। सिकंदर ने उन्हें पराजित करने के बावजूद उदारता की नीति अपनाई और उनके क्षेत्र पूर्ववत रहने दिए, परंतु जौनपुर में वहां के विस्थापित शासक हुसैन शाह सरकी और उसके समर्थकों द्वारा विद्रोह और उपद्रव भड़काए जा रहे थे, जिन पर नियंत्रण पाने में बाड़बक असमर्थ था। अतः 1492 में सिकंदर ने उसे पदच्युत करके जौनपुर का प्रत्यक्ष शासन ग्रहण किया। उसने हुसैन शाह के विरुद्ध भी सैनिक कार्रवाई की और बंगाल के सुल्तान पर भी चढ़ाई की, क्योंकि वह हुसैन शाह की सहायता कर रहा था। 1495 में बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह ने सिकंदर के साथ संधि कर ली। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आक्रमण न करने और एक दूसरे के विरोधियों की सहायता न करने का आश्वासन दिया। बिहार के अनेक क्षेत्रों में सिकंदर की संप्रभुता भी स्वीकार की गई। इस तरह सल्तनत की सीमा लगभग मुंगेर तक विस्तृत हो गई। सिकंदर ने मध्य भारत में भी सैनिक अभियान किए। उसने ग्वालियर के राजा मानसिंह से नजराना प्राप्त किया। धौलपुर के शासक विनायक देव को 1504 में पराजित किया। इसी वर्ष उसने मंडरेल पर अधिकार कर लिया। 1507 में उसने अवंतपुर और नरवर पर भी अधिकार कर लिया। सिकंदर ने राजपूतों की समस्या पर भी ध्यान दिया। 1506 में उसने आगरा नगर का निर्माण किया और राजधानी वहां स्थानांतरित कर दी, ताकि राजपूतों द्वारा दिल्ली की ओर बढ़ने को प्रयास को विफल किया जा सके। अपने इस सैनिक अभियान से सिकंदर ने दिल्ली सल्तनत को पुनः उत्तरी भारत के राजनीतिक जीवन का केंद्रबिंदु बना दिया। तैमूर के आक्रमण के पश्चात सल्तनत के क्षेत्रों में अधिकतम वृद्धि सिकंदर के समय ही संभव हुई। एक प्रशासक के रूप में सिकंदर ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उसने सामंतों पर कठोर अनुशासन लागू किया, उसकी जागीरों के प्रशासन और आमदनी पर नियंत्रण स्थापित किया, गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन करके और सेना की कार्यकुशलता में वृद्धि करके उसने शासक की शक्ति को बढ़ाया। उसने लगान व्यवस्था में सुधार किया। भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया। उसने लगान संबंधी आंकड़े इकट्ठा कराए, जिनके आधार पर लगान की वसूली का काम आसान हो गया। उसने न्याय विभाग की कार्यकुशलता को सुधारा। सामान्य रूप से उसके शासनकाल में शांति, सुव्यवस्था और आर्थिक संपन्नता बनी रही। सिकंदर ने सामाजिक जीवन के अनेक दोषों को दूर किया। उसने जन कल्याण के लिए अनेक प्रशंसनीय सुधार लागू किए। निर्धनों को आर्थिक अनुदान, मुफ्त भोजन का वितरण आदि उसके द्वारा किए गए जो कल्याणकारी उपायों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उसने विद्या और कला को प्रोत्साहन दिया। वह स्वयं भी एक अच्छा कवि था और गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था, परंतु सिकंदर की धार्मिक नीति असहिष्णुता पर आधारित थी। उसकी अन्य उपलब्धियों की तुलना में यह तथ्य शासक के रूप में उसका अवगुण माना जाता है। फिर भी यह निश्चित है कि लोदी शासकों में सिकंदर सबसे महान शासक था। वह निर्विवाद रूप से महानतम था। इब्राहिम लोदी 1517-26। 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र इब्राहिम उत्तराधिकार के युद्ध में विजयी होकर शासक बना। उसने सल्तनत की स्थिति को सुदृढ़ करने के प्रयास में सामंतों को अप्रसन्न कर दिया। यद्यपि उसने 1518 में ग्वालियर को जीता और अन्य स्थानीय विद्रोहों को दबाया, लेकिन सामंतों पर नियंत्रण पाने में वह असफल रहा। इब्राहिम योग्य व्यक्ति था, परंतु अहंकारी और अनुभवहीन था। अपने राज्य को सुरक्षित रखने में वह अंततः असमर्थ सिद्ध हुआ। 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई में उसे मुगल शासक बाबर ने पराजित कर दिया। इब्राहिम युद्ध में मारा गया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना स्थान पर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत के पतन के मुख्य कारण। पहला, राजनीतिक अस्थिरता। पतन के इन दोनों चरणों में कुछ कारणों का योगदान समान रूप से था, जबकि कुछ का विशिष्ट महत्व था। सर्वप्रथम, दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक व्यवस्था में ही इसके पतन के कारण निहित थे। उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम इस काल में विकसित नहीं हुआ, अतः महत्वाकांक्षी एवं शक्तिशाली सामंतों द्वारा बराबर गति हथियाने के प्रयास होते रहे और कुल मिलाकर 5 वंशों का शासन हम इस काल में देखते हैं। इसके दो दुष्परिणाम प्रकट हुए। राजवंशों के शीघ्र परिवर्तन से किसी वंश के प्रति पूर्ण स्वामी भक्ति का विचार विकसित नहीं हो पाया। द्वितीय, वंशों के बराबर परिवर्तन से राजनीतिक अस्थिरता बनी रही, जिस कारण महान शासकों की नीतियां भी अस्थायी रूप से लागू नहीं हो सकी और उनका प्रभाव सीमित रहा। इस कारण सल्तनत राज्य और भीतर से ही दुर्बल और अव्यवस्थित बना रहा। दूसरा, प्रशासनिक अव्यवस्था। सल्तनत काल में प्रशासनिक व्यवस्था के विकास में भी हम वैसी प्रगति नहीं पाते जो मुगल काल में संभव हुई। इल्तुतमिश ने प्रशासनिक व्यवस्था की रूपरेखा प्रस्तुत की, किंतु उसके वंशज इसका पूर्ण विकास नहीं कर पाए। अलाउद्दीन के प्रशासनिक संबंध इसके साथ ही समाप्त हो गए। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग वस्तुतः असफल रहे और फिरोज उसके सुधार भी असफल ही कहा जा सकता है। सिकंदर लोदी के सुधार में भी कोई अस्थायी प्रभाव नहीं छोड़ सके। यह सर्वविदित है कि सल्तनत एक केंद्रीय राज्य था और राज्य का अस्तित्व केंद्रीय प्रशासन की कार्यकुशलता से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ था। इल्तुतमिश एवं अलाउद्दीन जैसे सफल प्रशासकों के काल में अव्यवस्था का कारण राज्य की शक्ति का क्रमानुगत रूप से पतन होता गया। जब प्रशासन तंत्र ही अव्यवस्थित हो गया तो राज्य का अधिक दिनों तक बना रहना कठिन हो गया। तीसरा, आंतरिक प्रतिरोध एवं विद्रोह। दिल्ली सल्तनत में आंतरिक अव्यवस्था के दो अन्य महत्वपूर्ण कारण थे, एक राजपूतों का प्रतिरोध और दूसरा सामंतों का विद्रोह। सल्तनत की स्थापना के पूर्व उत्तरी भारत के शासक वर्ग के रूप में राजपूतों की सत्ता बनी रही थी। तुर्कों ने उन्हें पराजित करके एक छोटे से क्षेत्र में सिमट जाने को बाध्य कर दिया था, किंतु राजपूत शक्ति का पूर्ण विनाश तुर्क शासक नहीं कर पाए थे। दूसरी ओर राजपूतों ने भी तुर्कों की सत्ता को स्वीकार नहीं किया था और उनके द्वारा बराबर विद्रोह जारी थे। इन विद्रोहों के दमन में सल्तनत की सैनिक शक्ति का ह्रास होता रहा और राज्य कमजोर हुआ। दूसरी ओर सल्तनत काल में सामंत वर्ग को पूर्णतः अनुशासित और नियंत्रित करने के प्रयास भी बहुत सफल सिद्ध नहीं हुए। बलबन और अलाउद्दीन के अतिरिक्त अन्य शासक सामंतों को अनुशासित करने में प्रायः असफल रहे। सामंत अपनी महत्वाकांक्षा के कारण बराबर विद्रोह का कारण बने रहे और इनके दमन के प्रयास में भी सैनिक शक्ति का ह्रास होता गया। चौथा, विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमणों ने भी सल्तनत के लिए समस्याएं उत्पन्न की। सल्तनत के आरंभिक काल से ही उत्तर पश्चिम सीमांत में मंगोल आक्रमणों की समस्या बराबर बनी रही और इस कारण भी सुल्तान की सेना का सुल्तानों की शक्ति का मुख्य आधार उनकी सेना था और सेना का पर अत्यधिक बोझ पड़ने से राज्य का अस्तित्व प्रभावित होना स्वाभाविक था। तुगलक काल से सैन्य शक्ति का पतन तीव्र गति से प्रारंभ हुआ और कुछ ही समय पश्चात तैमूर के आक्रमण ने सल्तनत की सैनिक कमजोरी को सहज प्रदर्शित कर दिया। वह जब तक भारत में रहा, तुगलक वंश की सत्ता नाम मात्र के लिए रह गई और स्वयं तुगलक शासक अपनी राजधानी छोड़कर भाग निकला। सुल्तान की कमजोरी ने प्रांतपतियों को स्वतंत्र होने की प्रेरणा दी और गुजरात, मालवा और खानदेश, जौनपुर जैसे राज्य स्थापित हुए। इसी प्रकार दूसरे चरण में भी 1526 ईस्वी में बाबर के आक्रमण ने ही सल्तनत के पतन की प्रक्रिया को पूरी की। अतः विदेशी आक्रमण के विनाशकारी प्रभाव स्वतः स्पष्ट है। पांचवा, विघटनकारी तत्वों का योगदान। सल्तनत के पतन में विघटनकारी तत्वों का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा। आरंभिक काल में सल्तनत का पूर्वी प्रांत अर्थात बंगाल स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष करता रहा। आगे चलकर यही समस्या दक्षिणी प्रांतों में भी आरंभ हुई। सल्तनत की राजधानी अर्थात दिल्ली से इन प्रांतों की दूरी अधिक थी, आवागमन एवं संचार की सुविधाएं विकसित नहीं थी। भौगोलिक बाधाएं दूर स्थित प्रांतों पर नियंत्रण में अवरोध प्रस्तुत कर रही थी। ऐसी स्थिति में केंद्रीय प्रशासन की थोड़ी सी कमजोरी अथवा केंद्रीय शासन के विरुद्ध थोड़ा सा असंतोष विद्रोह के लिए प्रेरक हो सकता था और इन विद्रोहों ने सल्तनत के पतन में निश्चित योगदान दिया। छठा, विशिष्ट कारण। कुछ विशिष्ट कारणों का वर्णन भी अनिवार्य है। इस संदर्भ में 3 शासकों की नीतियों का परीक्षण आवश्यक हो जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल सल्तनत के इतिहास में एक विभाजन रेखा के समान है, जब सल्तनत चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर पतन की ओर अग्रसर हो गई। इस समय तक सल्तनत का क्षेत्रीय विस्तार पूरा हो चुका था। दूर स्थित प्रांतों पर नियंत्रण की समस्या जटिल हो चुकी थी। राज्य में आर्थिक संकट उत्पन्न हो चुका था और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रशासनिक प्रयोगों की असफलता ने सुल्तान के प्रति असंतोष को बहुत बढ़ा दिया था। इन सब कारणों से सल्तनत में समस्याएं और विद्रोह आरंभ हो चुके थे, जिनकी परिधि बंगाल, विजयनगर और बहमनी राज्य के स्वतंत्र होने में देखी जा सकती है। इसके बाद फिरोज तुगलक ने अपने शासनकाल में समस्याओं पर नियंत्रण प्राप्त करने के स्थान पर उन्हें स्थगित रखने का प्रयास किया। उसने तुष्टिकरण की नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य सामंत, उलेमा, सैनिक एवं अन्य प्रमुख वर्गों को संतुष्ट रखना था, किंतु सामंतों को प्रदत्त सुविधाओं ने केंद्रीय प्रशासन की कमजोरी का कारण बनी। उलेमा की इच्छानुसार अपनाई गई धार्मिक कट्टरता की नीति बहुसंख्यक हिंदू प्रजा को क्षुब्ध करने में सहायक हुई और सैनिकों को दिए गए विशेषाधिकार अन्य संगठन को दुर्बल बनाने में सहायक हुए। फलस्वरूप सल्तनत के पतन का पहला चरण पूरा हुआ। दूसरे चरण में इब्राहिम लोदी की नीतियों ने घातक परिणाम प्रस्तुत किए। सर्वप्रथम इब्राहिम अपने सामंतों को अप्रसन्न करने का दोषी था। द्वितीय, उसमें राज्य की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता नहीं थी। तीसरी, उसकी अनुभवहीनता और उसका अहंकार उसे गलत निर्णय लेने पर बाध्य कर रहा था। साथ ही साथ उस पर एक ओर राजपूतों, दूसरी ओर गुजरात के शासक द्वारा आक्रमण की संभावना बनी हुई थी। जब ऐसी परिस्थितियों में इब्राहिम को बाबर के आक्रमण का सामना करना पड़ा तो वह असफल सिद्ध हुआ और इसके साथ ही सल्तनत का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। दिल्ली सल्तनत के पतन के परिणाम। दिल्ली सल्तनत के विघटन से भारत में राजतंत्र की स्थिति प्रभावित हुई। तुर्क शासकों के अधीन निरंकुश राजतंत्र की कल्पना का भारत में प्रभाव बना रहा था, परंतु तैमूर के आक्रमण के पश्चात तुर्क सत्ता के अंत और अफगान सत्ता की स्थापना ने राजतंत्र का एक उदार रूप भारत में प्रस्तुत किया, जिसमें सामंतों की सहमति से सुल्तान द्वारा शासन चलाने की परंपरा आरंभ हुई। 1526 ईस्वी में मुगल राज्य की स्थापना के साथ ही पुनः शक्तिशाली राजतंत्र की परंपरा स्थापित हुई। सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन आया। तुर्क शासकों की तुलना में अफगान शासक वर्ग द्वारा हिंदू सामंतों को बड़े पद एवं राजनीतिक महत्व प्रदान करने की प्रक्रिया आरंभ की गई। इसके प्रभाव निर्णायक सिद्ध हुए और इसी परंपरा को मुगल सम्राटों, विशेषकर अकबर द्वारा और प्रोत्साहन दिया गया, जिससे एक सामासिक शासक वर्ग और शासन पद्धति का विकास मध्यकालीन भारत में संभव हो गया। समाप्त।